झलक की नेक पर एक लव बाइट्स जैसा निशान बना हुआ था, जिसे आदित्य ने पिछली रात इस तरह किस किया था कि उसके गर्दन पर हल्का सा निशान पड़ गया था। उसे देखते ही आदित्य भी मुस्कुराते हुए झलक को देख रहा था। हालांकि वो निशान अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, लेकिन झलक को देखकर उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी। जो कुछ भी उनके बीच हुआ था वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो बीच बीच में गुस्से से अभय को भी देख रहा था। वहीं अभय पूरी तरह हैरान था और मन ही मन बोला था, ये आज आदित्य भैया को क्या हो गया है? ये मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं जैसे मैंने इनके सामने से समोसों की भरी हुई प्लेट उठा ली हो। बार बार उनकी आंखों में ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो मुझे डरा रहा है, उसने कबीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा था। कबीर, तुम्हें नहीं लग रहा कि आदित्य भैया कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं? बार बार मुझे माथे पर सिलवटें डालकर देख रहे हैं जैसे मैंने उनकी भैंस चुरा ली हो। कुछ हुआ है क्या? तब कबीर ने ध्यान से आदित्य को देखा, जो हल्की मुस्कुराहट के साथ झलक को देख रहा था और मुस्कुराते हुए अनामिका से बातें भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही कबीर ने दूसरी बार आदित्य की ओर देखा, उसने इस बार आदित्य को अभय को घूरते हुए पाया। अब वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था। उधर अनामिका मुस्कुराते हुए बोली थी, बताओ झलक, कल रात क्या क्या हुआ था? तब झलक जल्दी से बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कमरे में आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो गई थी, झलक ने पूरी तरह झूठ बोलते हुए कहा। अब झलक को झूठ बोलते हुए देखकर अनामिका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से बोली थी, अच्छा, तो मेरी प्यारी और महान बहन को नींद आ गई थी, इसीलिए मेरी प्यारी बहन ने अपनी उस डिस्टर्ब बहन को, जो क्लब से परेशान होकर आई थी, उसे सांत्वना देना भी जरूरी नहीं समझा और खुद जाकर सो गई। बस मेरी बहन से इतनी सी गलती हो गई, फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। और मेरी बहन को ये लव बाइट्स किसने दिया? वो भी सीधे उसकी नेक पर? अब जैसे ही झलक ने ये सुना, उसने तुरंत अपना हाथ अपनी गर्दन के उस हिस्से पर रख लिया जहां पर पिछली रात आदित्य ने उसे किस किया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वो निशान अभी भी दिखाई दे रहा है। ये सोचते ही उसके गाल पूरी तरह लाल हो गए। उसी वक्त वो कॉफी का एक सिप ले रही थी और अचानक खांसने लगी थी। वहीं तब तक कबीर की नज़र भी उस निशान पर चली गई थी। अब तो कबीर पूरी तरह हैरानी में डूब गया था, लेकिन तभी आदित्य वहां से फौरन खड़ा हुआ और अपने फ़ोन कॉल का बहाना बनाते हुए बाहर निकल गया। उधर झलक सीधा अपने कमरे में भाग गई थी और जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर वो दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई थी। पहली बार उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक बार फिर बड़े प्यार से अपनी गर्दन के उस हिस्से को छुआ जहां पर आदित्य ने पिछली रात उसे किस किया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। अगर इस वक्त कोई भी झलक को देख लेता तो वाकई हैरान रह जाता कि झलक मैडम भी कभी इस तरह शर्मा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आदित्य एक तरफ खड़ा होकर अपने लाल हुए गालों को छिपाने के लिए लगातार सिगरेट पीने लगा था। तभी अभय आदित्य के पास आकर बोला था, क्या बात है भैया, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? अब अभय को क्या पता था कि आदित्य उससे गुस्सा था। उसे देखते ही आदित्य को पिछली रात की सारी बातें याद आ गई थीं। जिस तरह अभय ने उसे और झलक को बीच में डिस्टर्ब कर दिया था, वो बात अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। इसीलिए वो उसे घूरते हुए बोला था, तू यहाँ क्या करने आया है? और इस वक्त यहाँ से चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर उसने बेकार में ही अभय को डांट दिया और वहां से चला गया। वहीं कबीर अब उन दोनों की बातें सुनकर वहां आ गया था और अभय की रोनी शक्ल देखकर बोला था, क्या बात है, क्या कर दिया तूने ऐसा? तब अभय जल्दी से बोला, अरे मुझे क्या पता मैंने क्या किया है। जैसे ही कबीर ने उससे पूछा कि उसने कल रात क्या किया था, अभय अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, मुझे क्या पता, क्लब से आने के बाद मैंने लगातार बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, उसके बाद मैं अपने कमरे में गया था और फिर मैं ऐसे अपने मुंह पर हाथ रखकर सोने की एक्टिंग करते हुए लेट गया था। किसी से बात करने का भी मन था, फिर मैं झलक भाभी के पास गया, उनसे कुछ बातें की और उसके बाद मैं सो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनकर कबीर को सारा माजरा समझ में आ चुका था। वो समझ गया था कि इस वक्त आदित्य की अभय को लेकर नाराजगी की वजह क्या थी और पिछली रात आदित्य झलक के कमरे में क्यों गया था। ये सोचकर कबीर भी मुस्कुराने लगा था। उधर अनामिका जल्दी से अपना फोन लेकर खड़ी हुई और सीधा झलक के कमरे में चली गई थी। फिर वो बोली थी, फटाफट से फाउंडेशन लगा देती हूँ ताकि तुम्हारा ये निशान पूरी तरह कवर हो जाए, और वैसे भी आज हमें शॉपिंग करने जाना है, भूल गई क्या तुम? और हाँ, दादाजी ने कहा है कि वो हम दोनों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं, इसीलिए शॉपिंग पर जाने से पहले हमें दादाजी से मिलना होगा। दादाजी की बात सुनकर झलक ने भी सिर हिला दिया था। उसके बाद अनामिका ने फटाफट फाउंडेशन लगाकर झलक की गर्दन पर बने निशान को कवर किया और फिर दोनों सीधा दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गई थीं। कमरे में पहुंचते ही अनामिका ने उत्सुकता से पूछा था, दादाजी आप क्या कर रहे हैं और आप इस तरह सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्या आप कहीं जा रहे हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए उनकी ओर मुड़े और बोले, अरे तुम दोनों भी यहाँ हो? वैसे यहाँ सिर्फ तुम दोनों नहीं बल्कि लगभग सब लोग आ चुके हैं, लेकिन शायद तुम लोग एक बात भूल रहे हो कि हमारा बिजनेस अभी भी वहाँ चल रहा है और हमारी गैर मौजूदगी की वजह से वहाँ काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन बेटा, कुछ जरूरी काम आ गए हैं, हमारे कुछ वर्क्स में कुछ इशू आ गया है, इसीलिए हमें वहाँ जाना ही होगा। हम तुम्हें कल रात ही बताना चाहते थे, लेकिन तुम लोग कल रात काफी लेट आए थे और सुबह भी आराम कर रहे थे, इसीलिए हमने तुम्हें कल रात बताना जरूरी नहीं समझा। हम आज ही निकलेंगे और डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हारे पिता आरफ तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि सौरव जी और स्नेहा बेटी भी हमारे साथ चल रहे हैं। तुम तो जानती ही हो कि रोहन की स्कूल भी है और इसीलिए हमें वापस जाना होगा। ये सुनकर झलक पूरी तरह मायूस हो गई थी, लेकिन दादाजी ने अपने पास बैठाकर झलक को गले से लगाते हुए कहा, देखो झलक, तुम कोई मामूली लड़की तो हो नहीं, हमें तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ा बहुत डर जरूर लगेगा, लेकिन हम तुम्हारी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हो, और वैसे भी तुम्हारे साथ यहाँ आदित्य है, आरव है और बाकी सब लोग भी हैं, और वापस जाकर हमें तुम्हारी शादी की तैयारी भी करनी है। आदित्य के दादा दादा का भी फोन आया था और आलोक ने कहा कि जब तुम लोग यहाँ से अपना काम खत्म करके आ जाओगे और अपने दुश्मनों से निपट लोगे, तब तक हम पूरी तरह शादी की तैयारी कर लेंगे। फिर दादाजी ने गौर से झलक को देखते हुए पूछा, क्या बात है झलक, कुछ और बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? झलक ने कुछ नहीं कहा, केवल दादाजी को गले लगाकर खड़ी रही। दादाजी, आपके बिना रहने की आदत नहीं है। दादाजी मुस्कुराए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अरे मेरे बच्चे, तू तो मेरी शेर बेटी है, तू हर सिचुएशन से लड़ सकती है, तो ये छोटी मोटी बातें तुझे कैसे परेशान कर सकती है? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। दादाजी ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर प्यार से दबाया, मानो उसे शाबाशी दे रहे हों। उन्हें झलक पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था।
फिलहाल झलक के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त अपने दादाजी के साथ गुजारा था और वो जानते थे कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं नाराज हो जाऊंगा भाई अगर मेरी बच्चियों ने किसी से कम हिम्मत दिखाई, फिर दादाजी हंसते हुए बोले। खैर, प्राइवेट जेट किसी भी पल यहाँ आने वाला होगा, मैंने बोल दिया है, सारी अरेंजमेंट हो चुकी हैं, ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं। और हाँ, अगर आदित्य, कबीर और अभय तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उनकी अच्छी क्लास लगा दूंगा। ये कहते हुए दादाजी ने अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर शरारती अंदाज दिखाया। ये देखकर अनामिका तुरंत बोली, दादाजी आप किसी की भी क्लास मत लगाइए, मैं सबको संभाल लूंगी। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, दादाजी तुरंत हंस पड़े और बोले, अरे बच्चा, मैंने ये कहा कि अगर वो लोग तुम्हें किसी चीज़ को लेकर परेशान करें तो बता देना, उन्हें मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद कोई उल्टा सीधा डिसीजन लेने मत बैठ जाना, ठीक है ना? और कोई भी गड़बड़ मत होने देना। देखो अनामिका, तुम पहले मेरी बहुत समझदार बच्ची हुआ करती थी, लेकिन जब से झलक आई है ऐसा लग रहा है कि समझदारी तो तुम्हें छूकर भी नहीं गई। तुम इतनी ज्यादा नटखट हो गई हो कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। जैसे ही दादाजी ने अनामिका की टांग खींचते हुए ये कहा, वो तुरंत अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, दादाजी प्लीज, आप फिर से शुरू हो गए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब अपनी जिंदगी में मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि झलक के आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने हिसाब से एंजॉय करूंगी। दादाजी हंस पड़े, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे आज शाम को हल्दी भी है ना, तो तुम लोग हल्दी में चले जाना, अच्छे से खाना पीना, खूब डांस करना, मस्ती करना और खूब मजे करना, ठीक है? तभी सौलभ जी, स्नेहा जी और साथ ही साथ रोहन भी वहां आ गया था। रोहन आते ही झलक के गले लग गया और उदास होकर बोला, दीदी मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, आप लोग यहाँ पर कितनी मस्ती करोगे, कितना मजा करोगे, मुझे भी आप लोगों के साथ रहना है। और अनामिका दीदी, हम रात में गेम भी तो खेलते हैं ना, अब मेरे साथ गेम कौन खेलेगा? कैंडी क्रश खेलेंगे, दूसरे गेम खेलेंगे, साथ ही साथ फ्री फायर भी खेलेंगे। क्योंकि फ्री टाइम में अनामिका और रोहन एक साथ बैठकर कितने ही सारे गेम खेला करते थे, इसलिए उसे गेम्स खेलने का सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। अपने भाई की बात सुनकर अनामिका घुटनों के बल बैठ गई और उसे गले लगाकर बोली, अच्छा अच्छा चंपू, कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो और तब तक मेरे बिना एक भी लेवल क्रॉस मत करना और एक भी नई गेम मत खेलना, हम दोनों साथ में मिलकर ही सारे लेवल क्रॉस करेंगे। रोहन फिर झलक की तरफ देखकर बोला, और झलक देवी, अगर आप चले जाओगी तो फिर मुझे बॉक्सिंग कौन सिखाएगा? क्योंकि फ्री टाइम में झलक और रोहन साथ में बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उसे ये बात भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। वहीं स्नेहा जी ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, अच्छा अच्छा बस करो, शांत हो जाओ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम तुम्हें वहां ले जाकर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। क्या हम तुम्हें खेलने कूदने नहीं देंगे? क्या हम तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही करवाएंगे? तुम तो अपनी डॉन दीदी से हमारी शिकायत लगा रहे हो। तभी रोहन नटखट अंदाज में बोला, मम्मा, अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया ना, तो मैं झलक दीदी को फोन करके आपकी सारी शिकायत कर दूंगा। रोहन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। फिलहाल देर हो रही थी क्योंकि तभी बाहर से प्राइवेट जेट के आने की आवाज सुनाई दी थी।